आप सूरत अनफाल के बारे में क्या जानते हैं? कभी किसी को इसका वजीफा करते हुए देखा? इसका तावीज बनाकर गले में डालते देखा? सात सहेलियों को बुलाकर 70 दफा इसको पढ़ते सुना? नहीं देखा ना। आज आप इस सूरत को शुरू कर रहे हैं, कल पूरी करेंगे इंशाल्लाह जिंदगी रही तो। पूरी सूरत सुनने के बाद आप खुद से सवाल कीजिएगा, आखिर आज तक लोग इस सूरत का वजीफा क्यों नहीं करते? आखिर आज तक लोगों ने इस सूरत के खत्म पर महफिलें क्यों नहीं सजाई? आपको जवाब इंशाल्लाह मिलेगा। पूरी की पूरी प्रैक्टिकल सूरत, अमली जिंदगी की जिद्दोजहद की सूरत, और कैसे सहाबे कराम ने थोड़े से अरसे में इंसानियत को खैर दी उसका इजहार है। आइए हम इसको इस सोच से पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसके एक एक लफ्ज़ से नसीहत और इबरत लेने वाला बना दे, अमल वाला बना दे और हमारी कमी बेशियों को दूर कर दे। थोड़ा सा इस सूरत के नाजिल होने की बात बतानी पड़ेगी आयत के शुरू में। आयत पढ़ के बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यसलूनका निल अनफाल, कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, फत्तकुल्लाह वस्लिहु ज़ात बैनिकुम वतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। तुमसे अनफाल यानी माले गनीमत के बारे में पूछते हैं, कहो ये अनफाल तो अल्लाह और उसके रसूल के हैं। यानी तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? माले गनीमत में जो कुछ है अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, तुम इस पे इतनी तवज्जो क्यों देते हो? बल्कि क्या करो, बस तुम लोग अल्लाह से डरो और अपने आपस के ताल्लुकात दुरुस्त रखो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। यहां पे आपको लग रहा है सवाल, असल में गजवा बदर के गिर्द घूमती है यह सूरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में थे कोई गजवा नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता अहकाम आते जा रहे थे, लोग अमल करते थे। मदीना में आने के बाद गजवा बदर पहली जंग की सूरत में जब सामने आई तो उससे मुतल्लिक कई सवाल उभरे। उसमें से एक सवाल कब उठा? जब माले गनीमत जमा हुआ। माले गनीमत की सूरत में जब रुपया पैसा सामने आया और जो भी चीजें थी, तो सहाबा के जहन में एक सवाल उठा कि अब इस पैसे का क्या करना है। पहले क्या होता था कि उस सारे पैसे को, पहली उम्मतों में क्या होता था कि दुश्मन से जो भी चीजें मिलती थी उसको आग लगा दी जाती थी, यानी मनहूस समझा जाता था कि हम दुश्मन की छोड़ी हुई चीजों को क्यों लें, क्योंकि लोग भी ज्यादा नहीं थे, जरूरत भी नहीं थी माल की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो एक खास खूबी दूसरी नबियों से अलग है वो क्या है कि आपकी उम्मत के लिए या आपके लिए माले गनीमत को जायज करार दे दिया। अब सवाल सरासर माली मामले से मुतल्लिक था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका छोटा बच्चा या जवान होता हुआ 7-8 साल का बच्चा आपसे कोई बड़ी बड़ी बातें पूछने लगते हैं रुपए पैसे के बारे में। अब्बू आपके पास कितने पैसे हैं, कहाँ रखते हैं, कितने कमाते हैं, ये कितने की आती है? तो आप कहेंगे बेटा जी आप क्यों पूछ रहे हैं, आप जाइए नमाज पढ़िए। बिल्कुल यही बात, छोटा मुंह बड़ी बात। अभी सहाबा का वो तज़किया नहीं हुआ था, अभी नई नई बात थी, अभी सहाबा ने बाकी बहुत सारे इम्तिहान तय कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन गौर से सुनिएगा जुमला, अभी तक उन्होंने दीन के लिए माल आता नहीं देखा था, क्योंकि अभी तो जाता ही देखा था। 13 साल मक्का में तो सहाबा बेचारों के अपने माल भी छिन गए। हिजरतों की सूरत में क्या हुआ? घर बार वहीं छोड़ छाड़ के आ गए। तो पहला मौका था बदर का कि दीन के नाम पे माल आया, वाह माल आ गया है। कल तक तो हम बेचारे दूसरों की नजरों पे डालते थे, हमारे तो अपने माल चले गए। तो एकदम ये एक बड़ा कहना चाहिए एक्साइटिंग लगा, अच्छा इस माल का क्या करें, तजस्सुस भी हो जाता है पैसे के नाम के साथ। तो अल्लाह ताला ने उस एक्साइटमेंट को कूल डाउन किया। ये सवाल आयत नंबर 1 पे आया है, जवाब इसका कहाँ मिलेगा? कल के पारे की पहली आयत में, वालमुअन्नमा गनिमतुम से। 39 आयतें हम इस बारे में भी पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने बता दिया कि माली मामलात के बारे में कोई बात करने से पहले करो क्या? नंबर 1, फत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो। तकवा के बगैर माल हाथ में लग जाए तो फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। दूसरा काम क्या करो? वसलिहु ज़ात बैनिकुम, आपस के ताल्लुकात तो पहले दुरुस्त करो, क्योंकि जब तक आपस के ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है पैसे को हाथ न लगाना, शक की करते रह जाओगे, वो खा गया, वो ले गया, वो दे गया, उसने उधर लगा दिया, उसने कर दिया, आपस की सलाह करो। तीसरा, वतीउल्लाह, अपनी जिंदगी में इताअत का रंग तो लाओ, और अती तौ से है, खुशी से, खुशी खुशी दीन के काम करने सीखो। तुम्हें अल्लाह ने موقع دیا ہے. اور چوتھی بات ورسولہ ہو, رسول کی اطاعت کرو, ان کنتم مومنین. آپ دیکھیے کہ چار نکاتی ایجنڈا دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مال غنیمت دین کے نام پہ جو مال آیا ہے وہ تمہارا نہیں ہے, قل اللہ و رسولہ ہو. اللہ نے دیا, نبی کے ذریعے آیا. جب لوگ اس مال کو اپنا مال سمجھتے ہیں, اپنا حق سمجھتے ہیں تو جھگڑتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہیں کام کرنے کا موقع دے دیا ہے, کیا آپس میں لڑو گے؟ حالانکہ صحابہ لڑنے والے نہیں تھے. یاد رکھیے, مت سوچیے کہ صحابہ کے دل میں کوئی حبے چاہ تھی جس کا ہم تذکرہ پیچھے سے کر رہے ہیں, بلکہ اصل میں ٹریننگ دی جا رہی ہے, کیونکہ یہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی ذات کو تقویٰ کے ذریعے ٹرم کرو, پہلے تم اپنی اصلاح تو کرو. تمہاری اتحاد نے جنگ جتوائی ہے, ایسا نہ ہو مال دے کر آپس میں اختلاف سے لڑنے لگو اور دشمن تم پہ تالیاں بجائے. تو یہاں یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے بتا دیا, واتی اللہ و رسول ان کنتم مومنین. اور آگے بڑی خوبصورت آیت ہے, انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اور اس کو ہر ایک اپنے اندر ڈھونڈے, کس سوچ کے ساتھ کہ قرآن سنتے وقت میرے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ ہم قرآن کی محفل میں اپنی اصل پہ آئے ہوتے ہیں, سب اوپر کے کور کوٹنگ نکل جاتی ہیں اور قرآن بالکل ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے. تو ذرا اس آئینے کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھتے ہیں. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں. خود سے میں بھی پوچھوں, آپ بھی پوچھیے, قرآن سنتے وقت کیا میرا دل لرزتا ہے؟ کانپتی ہوں؟ اتنی بڑی ہستی کا کلام سن رہی ہوں. اور دوسری خوبی, اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. خود سے پوچھیں, کیا ہر آیت میرے ایمان میں اضافہ کر رہی ہے؟ اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں, کیا اللہ پر توکل کرنا آ رہا ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں, یعنی ابھی لینے کی بجائے خرچ کرنے والے بنو, پھر فائدہ ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے دل کا لرزنا خوش قسمتی کی علامت ہے. اگر اس وقت یہ کیفیت ہے اس کو پریزرو کر لیں, یہ انشاءاللہ بعد میں آپ کی زندگی کے کام آئے گی. فرمائے لہم درجات عند ربہم, ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں. اللہ ہمیں حقیقی مومن بنا دے, نقلی مومن نہیں بننا, ہم نے اصلی مومن بننا ہے. قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی, جبکہ اب یہاں سے غزوہ بدر کی کچھ جھلکیاں, اس کو ہم کل کے پارے میں ایک آ رہی آیتیں کہ جہاں ہم انشاءاللہ ایک پیراگراف کی صورت میں سمجھیں گے, ابھی آیتوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا, یعنی لوگوں میں کچھ ایسے تھے کہ جو یہ سفر یا یہ منزل طے کرنا نہیں چاہ رہے تھے. وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. کچھ کہتے تھے جنگ کے لیے نکلنا چاہیے, کچھ کہتے تھے نہیں نکلنا چاہیے. ان کا حال یہ تھا گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. یاد رکھیے ہر گروہ میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں, صحابہ میں بھی ایسے ہی تھا, لیکن جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا اس پہ سر جھکا کر چل پڑے. یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا, یعنی یا ابو سفیان کے لشکر پہ تم قبضہ پاؤ گے یا ابو جہل کے لشکر پہ. تم چاہتے تھے کمزور گروہ تمہیں ملے, کون سا جس میں مال بہت ہے لیکن اسلحہ اور ان کی حفاظت کے لوگ نہیں, یعنی ابھی سفیان کا لشکر. مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے, خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. مسلمانوں کا سامنا ابو سفیان کے لشکر سے ہونے والا تھا جس میں سونا چاندی بہت کچھ تھا, اور مسلمانوں کو امید تھی کہ اس جنگ کی صورت میں ہمیں بہت سارا مال غنیمت ملے گا. اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ ابو سفیان جو تھے وہ راستہ بدل کر نکل گئے اور مسلمانوں کی حد سے نکل گئے. ابو جہل جو دفاع میں آیا تھا اور بہت زیادہ جدید اسلحے اور ساز و سامان کے ساتھ آیا تھا, مسلمانوں کا ٹکراؤ اس کے ساتھ ہو گیا. ظاہر مسلمانوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی, یہ بہت ہارڈ ٹاسک ہے, ये बहुत मुश्किल टारगेट है। अल्लाह कहते हैं मुश्किल है तभी तो पता चलेगा कि तुम में से कौन दीन पे जमता है। तो गज़वे बदर असल में एक बड़ी खूबसूरत जंग थी जो वाकई दीन के रास्ते में जिद्दोजहद करने वालों को बहुत कुछ देती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो मौका याद करो जबकि तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, जवाब में इसने कहा मैं तुम्हारी मदद के लिए पै दर पे 1,000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। नबी सल्लम सहाबा की सफ़ें बनाकर उनको उनकी जगह पे मुतय्यन करके खुद अरीश पे चले गए और दुआएं करने लगे। अच्छे लीडर का यही काम होता है, काम दूसरों को करने देता है लेकिन खुद उनके लिए दुआएं भी करता है और उनके ऊपर एक नज़र भी रखता है कि वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि नबी सल्लम इतना रो रहे थे कि बार बार आपकी चादर कंधों से गिरती थी और मैं आपको कह रहा था अल्लाह के नबी अब गम ना करें, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। और नबी सल्लम क्या कह रहे थे कि अल्लाह मैंने बड़ी मुश्किल से ये 313 लोग जमा किए हैं, अगर आज ये यहाँ मारे गए तो ज़मीन पे तेरा नाम कोई नहीं लेगा क्योंकि आपको पता था मैं आखिरी नबी हूँ। अच्छे लीडर्स को अपने नाम की बात नहीं होती, उनको ये होता है कि दीन की ये खेती ज़ाया ना हो जाए, ये मेहनत ज़ाया ना हो जाए। अक्सर लोग कहते हैं औलाद नहीं है तो बाद में आपका नाम कौन लेगा, हमारे दुनिया के असूलों में तो यही होता है। हालांकि आप देखिए औलाद वालों को बेनाम होते हमने देखा और बदनाम होते भी देखा, लेकिन एक सच्चे दीनदार को हमेशा ये फिक्र होनी चाहिए मेरे बाद दीन की लगी हुई ये खेतियाँ और ये फसलें तबाह ना हो जाए। और ये एतमाद बंदे को दुनिया पूरी में घूमने फिरने पे तैयार करता है, कोई बात नहीं कहीं भी चले जाएं पीछे काम ठीक हो रहा है। लेकिन अगर पीछे काम ही ठीक ना हो रहा हो, पिछले सुस्त हो जाएं, पिछले अपनी जिम्मेदारियां ही अदा ना करें, पिछले आपस में झगड़ने लग जाएं, तो मुझे बताइए कि अगली जगह पे भी कोई काम होगा कि नहीं होगा। तो ये दुआ हम सबको सिखाती है कि अगर आप दीन के काम में कहीं ना कहीं हिस्सेदार हैं तो नजर भी रखिए और अल्लाह से दुआ भी कीजिए कि अल्लाह इन कोशिशों को जाया ना करना, इस फसल में कोई ऐसा कीड़ा ना पड़ जाए, कोई ऐसा निफाक ना आ जाए, कोई ऐसी रियाकारी ना आ जाए कि जिसकी वजह से ये सब जाया हो जाए। और आप देखिए अल्लाह ने अब कैसे वो दुआ सुनी, जवाब में उसने फरमाया मैं तुम्हारी मदद के लिए पै दर पे 1,000 फरिश्ते भेज रहा हूँ, ये बात अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बता दी कि तुम्हें खुशखबरी हो और तुम्हारे दिल इससे मुतमईन हो जाए, वरना मदद तो जब भी होती है अल्लाह की तरफ से होती है, यकीनन अल्लाह जबरदस्त और दाना है। इससे क्या पता चलता है कि लीडर्स की दुआएं बहुत काम देती हैं। माँ बाप की दुआएं लगा ले, लीडर लफ्ज को बदल दें, माँ बाप की दुआएं जिंदगी भर आपके काम आती हैं। आप सोचते हैं ये हमारी हुनरबंदी है, ये हमारी को होशियारी है, नहीं, वो किसी उस्ताद की दुआ होती है, वो कहीं माँ बाप की दुआ होती है। यानी गजवे बदर की ये फतह ठीक है सहाबा की बहादुरी है पर पीछे बरकत नबी की दुआओं की है। तो हमेशा दुआएं लीजिए, माँ बाप की दुआएं, उस्तादों की दुआएं लीजिए, आप देखिए कि आप मट्टी में हाथ डालेंगे वो सोना बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और वो वक्त जबकि अल्लाह अपनी तरफ से हुनूदगी की शक्ल में तुम पर इत्मीनान और बेखौफी की कैफियत तारी कर रहा था और आसमान से तुम्हारे ऊपर पानी बरसा रहा था ताकि तुम्हें पाक कर दे और तुमसे शैतान की डाली हुई नजासत दूर करे और तुम्हारी हिम्मत बंधाए और तुम्हारे कदम इसके जरिए से जमा दे। देखिए अल्लाह कैसे एक काम से कई काम ले रहा होता है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ये सब कुछ लेता है। फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे लिए मदद करता है। इससे क्या पता चलता है कि बास दफा दीन के काम करते वक्त बहुत सारी कमी पेशियां होती हैं, शैतान दिलों में वसवसे डालता है, मैं घर वालों का हक मार रही हूँ, मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, मेरे शौहर को वक्त नहीं देती, ये ऐसे ख्यालात थे। अल्लाह ने बारिश बरसाई, सहाबा के दिल ठंडे हो गए, हिम्मत बंध गई और एक वक्त ऐसा आया कि उनको वाकई खुशी हुई और अल्लाह ताला ने उनके कदम जमा दिए। इज यू ही रब्बु का इलल मलाइका, और वो वक्त याद करो जबकि तुम्हारा रब फरिश्तों को इशारा कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अहले ईमान को साबित कदम रखो। क्या पता चला, फरिश्ते जमाने में मदद करते हैं। शायद आपका ये जो रोज आना मुमकिन हो रहा है ये फरिश्तों की मदद के साथ हो रहा हो। देखिए हम और आप मैदान जंग में तो नहीं जा रहे और अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए कि हमें जाना पड़े। हमारा मैदान जंग ये इल्मी जंग है, ये दीन का, ये दुनिया में बुराई के खात्मे का है। इसमें भी आप जितना अपने आप को प्योर करते जाएंगे अल्लाह की मदद आपके साथ आती रहेगी। मैं भी काफिरों के दिलों में रोब डाले देता हूँ, बस तुम इनकी गर्दनों पर जरब और जोड़ जोड़ पर चोट लगाओ। ये इसलिए कि इन लोगों ने अल्लाह और रसूल का मुकाबला किया और जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करे अल्लाह इसके लिए नहायत सख्तगीर है। ये है तुम लोगों की सजा, अब इसका मजा चखो और तुम्हें मालूम हो कि हक का इनकार करने वालों के लिए दोजख का अजाब है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम एक लश्कर की सूरत में कुफार से दो चार हो, इसको हाईलाइट करें, लश्कर का रोग होता है, टीम का एक रोग होता है। ऑर्गेनाइजेशन हो तो दूसरों के दिलों पर रोब तारी होता है। बिखरी कोशिशें, टूटी फूटी कोशिशें और डिसऑर्गेनाइज चीज़ें कभी दूसरों को मुतासिर नहीं करती। पर मैं जब कभी ऐसा वक्त आए तो इनके मुकाबले में पीठ न फेरो। जिसने ऐसे मौके पर पीठ फेरी, इल्ला ये कि जंगी चाल के तौर पर ऐसा करे या किसी दूसरी फौज से जा मिलने के लिए, तो वह अल्लाह के गज़ब में घिर जाएगा। इसका ठिकाना जहन्नुम होगा और वह बहुत बुरी जाए बाजगश्त है। बस हकीकत यह है कि तुमने इन्हें कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने इनको कत्ल किया। ए नबी, तूने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका, और मोमिनों के हाथ जो इस काम में इस्तेमाल किए गए तो ये इसलिए था कि अल्लाह मोमिनों को एक बेहतरीन आजमाइश से कामयाबी के साथ गुजार दे। यकीनन अल्लाह ताला सुनने और जानने वाला है। मैदान जंग में तलवारें टूट गईं, असबाब ख़त्म हो गए, अब क्या करें? अल्लाह के नबी खुद मैदान जंग में आए, मट्टी एक पकड़ी ऐसे मुट्ठी भर के और उसको यूं फेंका, शाखतिल अबसार। अल्लाह ने उस मट्टी को, कंकर को बुलेट बनाकर कुफार की आंखों में मरवा दिया। थोड़ी देर के लिए उनको कुछ ना नजर आया, घबराहट में उनके हाथों से तलवारें गिरी, वही तलवारें जाके मुसलमान सिपाहियों ने पकड़ी और मैदान जीत गए। आपका मेरा काम इखलास के साथ काम करना है। आपके मेरे ये अल्फाज अल्लाह कहाँ पहुँचाएगा मुझे आपको नहीं पता। आप में से जितने साथी इस वक्त भी इस दौरे कुरान को कंडक्ट करवा रहे हैं, ए टू जी जिसको मैं कहती हूँ, जी मैं उनको कहती हूँ जो एडिटिंग करके आगे दूसरों के लिए तैयार कर देते हैं, मैं कहती हूँ उनको नहीं पता इस दौरे कुरान ने क्यामत तक कितनों के दिलों के अंदर से कुफर और निफाक और हसद को दूर करना। आज कोशिशों में इखलास डाल लें, अल्लाह आपके अंदर इंशाल्लाह बरकतें डाल देगा। मत कहिए असबाब नहीं। और एक बात याद रखिए, कभी दीन के किसी काम पे नो ना कहें, नो इट्स इम्पॉसिबल, आई कैंट, तौफीक मांगे, ये क्या करूंगी, अल्लाह मुमकिन बना। क्योंकि जब हम नो कह देते हैं बस उसके बाद अल्लाह फिर नो ही डाल देता है, वो कहते हैं नहीं है तो ना सही, क्योंकि वो सुनने वाला है। ज़ालिकुम अन्नल्लाह मुहिनु कैदिल काफिरीन, ये मामला तो तुम्हारे साथ है, यानी मुसलमानों की तो इतनी मदद है, उधर काफिरों के साथ क्या हो रहा था? काफिरों का मामला ये है कि अल्लाह इनकी चालों को कमजोर करने वाला है। इन काफिरों से कह दो अगर तुम फैसला चाहते हो तो लो, फैसला तुम्हारे सामने आ गया, अब बस आ जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है, वरना फिर पलट कर इसी हिमाकत को अगर दोहराओगे तो हम भी इसी सजा को दोहराएंगे, और तुम्हारी जमीयत ख्वाब वो कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो तुम्हारे कुछ काम ना सकेगी। ऐसे लगता है आज के मुसलमानों को अल्लाह कह रहा है, 2 बिलियन के करीब तुम्हारी जमीयत है इस वक्त, लेकिन बिखरे हुए हो, खसो खाशाक हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो किरदार नहीं है, वो इखलाक नहीं है, क्योंकि अल्लाह का फैसला क्या है कि अल्लाह मोमिनों के साथ है। अल्लाह हमें ईमान दे दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू, देखिए किरदार साजी, करेक्टर बिल्डिंग ये ज़रूरी है किसी दीन के काम के करने के लिए, असबाब तो रखे पड़े हैं। आज मैं और आप वो किरदार तो बने जो सहाबा का था, अल्लाह आपको ज़मीनों के टुकड़े भी देगा, इमारतें भी देगा, अल्लाह आपको असबाब भी देगा, लेकिन पहले आप काम करने वाले हाथ बनाएं। ये हर जगह अल्लाह का वादा है। सहाबा को इतनी तरक्की क्यों मिली, क्या थे असबाब? टूटी हुई तलवारों से खेलते थे। हजरत उकाशा मैदान बदर में थे, नबी सल्लम के पास आए, कहा अल्लाह के नबी तलवार टूट गई है। कहा क्या करूं, मेरे पास भी नहीं। देखा तो नीचे एक लकड़ी का फट्टा जिसको आप कह लें तख्ता पड़ा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लम ने उसको पकड़ा और आपने उसको पकड़ कर हजरत उकाशा को दिया। मोजज़े नबी का है, जो मोजज़े वो हैं। अल्लाह के नबी के हाथ से वो लकड़ी का तख्ता उकाशा के हाथ में जाते ही चमकती हुई तलवार में बदल गया। कहा जाओ अब इसका हक दो। मरते दम तक वो तलवार अपने साथ रखी और कहा मैं इसका हक दूंगा। अबू दुजाना का किस्सा पढ़िए, इतने हीरे मोती हैं इन जंगों के अंदर छुपे हुए, क्योंकि अल्लाह असबाब को नहीं देखता। अल्लाह ताला टूटी हुई लकड़ियों में वो बरकत डाल देता है जो जदीद हथियारात में नहीं पड़ती, क्योंकि पीछे ईमान नहीं है। अल्लाह ईमान वाले दिल बना दे। इसीलिए अब दोबारा किरदार साजी, ए लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और हुक्म सुनने के बाद सरताबी ना करो। चलिए 3 सेकंड आपको छोड़ती हूँ इस आयत के साथ। सरताबी क्या थी? ये देखिए। और सरकशी क्या थी? यूं सरकश, कश लगाते हैं ना पीछे खींचना, यानी हुक्म सुन रहे हो ना तो मानो, ऐसे कहो, ऐसे ना कहो क्योंकि इससे बरकत चली जाती है, यानी जो कह सुन रहे हो उस पर अमल करो। इन लोगों की तरह न हो जो जिन्होंने कहा हमने सुना हालांकि वो नहीं सुनते। क्यों सोचो में कहीं और पहुंचे होते हैं, गाफिल हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यकीनन अल्लाह के नजदीक बदतरीन किस्म के जानवर वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अकल से काम नहीं लेते। अगर अल्लाह को मालूम होता कि इनमें कुछ भी भलाई है तो वो जरूर इन्हें सुनने की तौफीक देता। ये आपकी तारीफ है। अल्लाह उसको सुनने की तौफीक देता है जिसमें खैर होती है। अल्लाह ने आपकी खैर को बाहर निकालना है, इसीलिए ये कुरान का पानी आपके मेरे दिल पर पड़ रहा है। लेकिन भलाई के बगैर अगर वो इनको सुनवाता तो वो बेरुखी के साथ मुंह फेर जाते, दिल ही ना लगता उनका, बोर होने लगते, नींद आने लगती, बैठ नहीं सकते। तो याद रखिए, केयरलेस एटीट्यूड के साथ ये किताब नहीं मिलती। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पे लब्बैक कहो। कहते हैं लब्बैक, जबकि रसूल तुम्हें उस चीज की तरफ बुलाए जो तुम्हें जिंदगी बख्शने वाली है। अल्लाह का दीन, तबलीग, अल्लाह के दीन की जिद्दोजहद, ये सब कुछ इस पे आता है, इसमें जिंदगी है। और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल है। ये भी डराने वाली आयत है। और इसी की तरफ तुम समेटे जाओगे और बचो उस फितने से जिसकी शामत मखसूस तौर पर सिर्फ उन्हीं लोगों की तरफ महदूद ना रहेगी जिन्होंने तुम में से गुनाह किया हो। ये कौन सा फितना है? सुन्नतों का इनकार, हदीस का इनकार, क्योंकि उसके नतीजे में अल्लाह बाकियों को भी पकड़ लेता है। और जान रखो कि अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। वस्कुरिजन तुम कलील मुस्तदफून फिल अर्दी, याद करो वो वक्त जब तुम थोड़े थे, तुमको जमीन में बेजोर समझा जाता था, तुम डरते रहते थे कि कहीं लोग तुम्हें मिटा ना दे। है ना ऐसी भी हिस्ट्री मुसलमानों की। फिर अल्लाह ने तुमको जाए पनाह मुहैया की, अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत किए और तुम्हें अच्छा रिस्क पहुंचाया, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। यानी अल्लाह ताला सहाबा को कहता है कल थोड़े थे आज ज्यादा हो। याद रखिए, जब भी दीन का काम नया नया शुरू होगा कमजोरी होगी, हर चीज की कमी होगी। और खतरा क्या होगा? हाय ये काम नहीं होना, हाय ये नहीं होना, ये नहीं पनपेगा। फिर अल्लाह जमाता जाता है, जब बंदा जमता है फिर उसको जरा खूब असबाब मिलते हैं तो अल्लाह कहता है अपने माजी को ना भूलना, तुम थोड़ों से ज्यादा हुए हो। कोई पैसा नहीं होता था, अब है। कोई तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, अब है। कोई जगह नहीं थी, अब है। करो क्या? तुम डरते रहो, डर डर के अल्लाह के सामने रखो, फिर अल्लाह मदद करेगा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जानते बूझते अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत ना करो। अल्लाह ताला हम सबको खयानतों से बचाए। अपनी अमानतों में गद्दारी के मुर्तकिब ना हो। और जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद हकीकत में सामान्य आजमाइश है। जब कोई बेटा पैदा हो तो कोई अगर आपसे ये कह दे अल्लाह आपको इस आजमाइश में पूरा उतारे तो बुरा ना माने। हकीकत है कि हर बच्चा एक आजमाइश है और एक एक बच्चे के दीन ईमान की फिक्र करनी है इंशाल्लाह। और अल्लाह के पास अजर देने के लिए बहुत कुछ है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम खुदा तरसी इख्तियार करोगे फिर तकवा, तो अल्लाह तुम्हारे लिए कसवटी बहम पहुंचा देगा और तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर करेगा और तुम्हारे कसूर माफ करेगा। अल्लाह बड़ा फजल फरमाने वाला है। अल्लाह हमें ये सारी खूबियाँ दे दे। वो वक्त भी याद करने के काबिल है जबकि मुनकरीने हक तेरे खिलाफ तदबीरें सोच रहे थे। आपकी हिजरत की रात, क्या असबाब थे कि अल्लाह के नबी मक्का से मदीना आए? जान बचाकर नहीं आए, ईमान बचाकर आए। क्या कोशिशें थी काफिरों की कि तुझे कैद करें या कत्ल कर डालें या जिला वतन कर दें? वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी चाल चल रहा था। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। जब उनको हमारी आयात सुनाई जाती थी तो कहते थे हाँ सुन लिया हमने, हम चाहें तो ऐसी बातें हम भी बना सकते हैं। ये तो वही पुरानी कहानी है जो पहले से लोग कहते चले आए। केयरलेसली कुरान को सुनते थे। और वो बात भी याद है जो उन्होंने कही थी, खुदाया अगर वाकई ये हक है तेरी तरफ से तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या कोई दर्दनाक अजाब हम पर ले आ। इस वक्त अल्लाह इन पर अजाब नाजिल करने वाला ना था जबकि तू इनके दरमियान मौजूद था। और अल्लाह का ये कायदा है कि लोग इस्तगफार कर रहे हों और वो इनको अजाब दे दे, लेकिन अब क्यों ना वो इन पर अजाब नाजिल करे जबकि वो मस्जिद हराम का रास्ता रोक रहे हैं, हालांकि वो इस मस्जिद के जायज मतवल्ली नहीं। इसके जायज मतवल्ली यानी टेक केयरर सिर्फ अहले तकवा ही हो सकते हैं, मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। बैतुल्ला के पास इन लोगों की नमाज क्या होती थी? यहाँ देखिए, मक्का वालों ने नमाज का जो हुलिया बनाया था वो क्या था? बस सीटियां बजाते और तालियां पीटते और अपने जोम में कहते हम इबादत करें। आज भी कोई ऐसी इबादत है जिसमें लोग ये दो काम करते हैं? अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको। बस अब लो इस अजाब का मजा चखो अपने इस इनकार हक की पादाश में जो तुम करते रहे हो। जिन लोगों ने हक को मानने से इनकार किया वो अपने माल अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए सर्व कर रहे हैं। है बदबख्ती, कुछ लोग अपने माल देते हैं अल्लाह के रास्ते में और कुछ लगाते हैं कि लोग अल्लाह के रास्ते से रुक जाएं, और अभी और भी खर्च करते रहेंगे मगर आखिरकार यही कोशिश इनके लिए पछतावे का सबब बनेगी। फिर वो मगलूब होंगे, फिर ये काफिर जहन्नुम की तरफ घेर लाए जाएंगे ताकि अल्लाह गंदगी को पाकीजगी से छांट कर अलग कर दे और हर किस्म की गंदगी को मिलाकर इकट्ठा करे, फिर इस पलंदे को जहन्नुम में झोंक दे। जहन्नुम क्या है? ट्रैश कैन, जहां लोगों को आग लगा दी जाएगी। बेकार इंसानियत का बोझ, यही लोग असल दिवाली हैं। बैंक करप्ट लोगों को जहन्नुम में डालकर ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐ नबी, इन काफिरों से कहो अगर अब भी बाज आ जाएं तो जो कुछ पहले हो चुका उससे दरगुजर कर लिया जाएगा, लेकिन अगर ये फिर पिछली रविश को दोहराएंगे यानी उसी काम को दोबारा करेंगे तो जो गुज़श्ता कौमों के साथ हो चुका वो सबको मालूम है। ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो इन काफिरों से जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और दीन पूरे का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए, फिर अगर वो फितने से रुक जाएं तो इनके आमाल को देखने वाला अल्लाह है, और अगर ना माने तो जान रखो क्या कि अल्लाह तुम्हारा सरपरस्त है और वो बेहतरीन हामियों मददगार है। कितनी प्यारी आयत है आखिर में, क्या फालमु अल्लाह मौलाकुम नेमल मौला व नेमन नसीर। तो इस पैगाम पे ये पारा पूरा हुआ कि अल्लाह अगर तुम्हारा हिमायती और तुम्हारा वकील बन जाए तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो कुछ इसमें पढ़ा सुना इस पे गौर व फिक्र तदब्बुर और अमल वाला बना दे और हमारे अमल में इसको ढाल दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير